हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस क्लास में। और अभी लगभग इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। उसके बाद भी मिल सकते थे, लेकिन उस ट्यूजडे को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें पता था भक्तों को थके हुए हैं। इसलिए लगातार सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल के आने से पहले तैयारियां कि फेस्टिवल आएगा, मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे, और फेस्टिवल के दौरान सेवाएं, शारीरिक परिश्रम, मानसिक एग्ज़ाम, है ना, और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक अलग अचीवमेंट की फीलिंग। तो भक्तों के लिए, भक्तों के जीवन में भगवान के इन उत्सवों को मनाना, यही अपने आप में बहुत बड़े फेस्टिवल हैं और यही उनका जो है स्रोत है आनंद का। तो क्या क्या रहा आप लोगों के साथ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस जन्माष्टमी के, प्रभुपाद जैसे अपीयरेंस डे के, सॉरी, और जो फेस्टिवल्स आए, कैसा लगा, कैसी मेहनत करी, सेवा थी कि नहीं थी, थी तो कितनी की, कहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर आपको लगा कि बस अब तो मेरी सारी परीक्षा हो रही है ना, शरीर की वजह से, मन की वजह से, दूसरे भक्तों की वजह से, ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे। तो क्या रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? हाँ जी,
मतलब ज़्यादा रश हो गया था, नीचे भी ज़्यादा क्राउड हो गया था, खराब हो गया था स्टेज से।
तो इतनी सेवाएं की, लोगों की मदद की, सबको इनवाइट किया, तो अल्टीमेटली उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको ये सब सेवाएं करके?
बहुत अच्छा
लगा।
और
हाँ, ये सेवा भी बहुत अच्छी थी कि पूरे के पूरे वातावरण को साफ रखा जाए, शुद्ध रखा जाए और सेवा करते। आप तो एक दिन पहले से लग गए थे, कैसा रहा ये सेवा? नहीं थी आपके
पहले से प्रिपेयर करके चलना चाहिए, दो तीन दिन पहले। फिर ये सवाल इसको यहाँ एकदम एट ए टाइम अगर हम,
मतलब सेवा मिलने ही सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, सेवा मिलने के बाद उसकी प्लानिंग करना, उसके जो है डूज और डोंट्स पे ध्यान देना, क्या एडॉक चीज़ आ जाएगी उसके ऊपर ध्यान देना। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें कोई भी सेवा मिल जाए तो हमें लगता है कि बस किसी तरह सेवा हथिया लो, बस बस मुझे मिल जाए ये सेवा। लेकिन सेवा को बस लेने के बाद उसका मेवा खाने की हमारी आदत है ना, कर्म का फल, तो उसी तरह होना क्या चाहिए कि इतना मेडिटेशन होना चाहिए। हमने देखा पिछले साल भी, इस साल भी, भक्त लोग काफ़ी सेवाएं लेते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट रहता है, स्कोप रहता है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है कि कितना और उसको अच्छा करें। क्योंकि होता क्या है कि ऊपर ऊपर से देख लिया, ऊपर ऊपर से कर लिया, तो ठीक है कर तो लिया और क्या चाहिए, नहीं, सेवा को हर चीज़ का ए टू जेड होता है, उसकी पहले प्लानिंग, उसके बीच में उसके जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करना, उसके बाद उसको एक अच्छा एंड देते हुए क्लियर करना, उसके बाद उसका वाइंड अप, उसका फीडबैक, हर चीज़ लेना चाहिए। और व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को सुनने का, अपनी सेवा को और बेटर अच्छे तरीके से करने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा इस प्रकार ओपन रहते हैं वो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, सेवा मेरी है, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले, आपको आपको क्या मतलब है, आप अपना काम कीजिए। तो जो हम लोगों को कोई व्यक्ति फीडबैक देता है हम उसको अपना दुश्मन समझते हैं, या कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई हमारी सेवा में कुछ गलती निकालता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। लेकिन होना क्या चाहिए, एकदम उल्टा, हमें उसके चरण पकड़ने चाहिए। भैया धन्यवाद आपने फीडबैक दिया, धन्यवाद आपने मेरी सेवा में कोई कमी निकाली, धन्यवाद आपने जो है सही समय पर सही सजेशन दिया। लेकिन हम लोग कई बारी सेवा लेकर हमारा सातवें आसमान पर होता है हमारा अहंकार, ये सेवा तो मेरी है, ये तो मेरे से बिलोंग करती है, तुम कौन होते हो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो इस प्रकार पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है गलत चेतना से दूषित हो जाता है। और क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैच्ड है सेवा से तो किसी का सजेशन भी नहीं लेता कोई व्यक्ति। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि लोगों को तरीका भी नहीं है सजेशन देने का या कुछ चीज़ समझाने का या उसको रिपोर्ट करने का या क्रिटिस, बट स्टिल हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी जो सेवा है उसमें हम लोग बड़ों का, बराबर वालों का, छोटों का, सबका सजेशन लें कि मैं इसको और कैसे अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद उस सेवा को अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना, सबसे सुनना। तो ये हमारी सेवा में चार चांद लगाएगा, मतलब हमारी सेवा को बहुत अच्छा करेगा। और जो गलतियाँ हैं उसको तुरंत लिखना और उनको ठीक प्रकार से लिखने के बाद और मनन करना उस पर और उसको ठीक करने का प्रयास करना, तो जाके व्यक्ति बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। और अगर कोई आपको बस आसपास के आपके असिस्टेंट लोग ही वो जायजा करते नहीं पहुँचे, बड़ा हमने काम किया, सुबह ही आ गए थे हम तो, और हमने कितने गिलास उठा लिए, हमने कितना कुछ कर लिया, हमने इतनी किताबें बांट दी, नहीं, आप दुश्मनों के पास जाओ या उन लोगों के पास जाओ जो आपको हमेशा जो नेगेटिव ही बोलते हैं, है ना, उसको केवल ये सर्टिफिकेट दे देना कि ये तो गलत ही बोलेगा और उसके पास जाना नहीं, तो ये ठीक नहीं है। उसके पास जरूर जाना चाहिए, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा हितेशी है। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, चाहे बेशक आपके अंदर कोई कमियाँ नहीं हो, आपने ए टू जेड सब ठीक किया है, बट स्टिल उस व्यक्ति के पास जरूर जाना चाहिए, वो कुछ ना कुछ निकाल देगा। तो बड़ा फायदा होता है इन सब चीज़ों, ताकि हम लोग सेवाओं को अच्छा ढंग से कर सकें। और अगर आप सेवा को के लिए मेडिटेट कर रहे हो, सेवा के विषय में सोच रहे हो, उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, और बिना राग द्वेष के कि उसने कुछ बोल दिया, सजेशन दे दिया, ऐसा नहीं, उनको अपना मित्र समझो, उनको शुभचिंतक समझो, क्योंकि वो आप ही कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं आपकी सेवा को अच्छे तरीके से करना। क्योंकि अगर आपने सेवा अच्छी करी तो कृपा आपको मिलनी है, समझ रहे? तो और कोई व्यक्ति बता सकता है उसका एक्सपीरियंस सेवा करते हुए? गुड, आप सेवा कर रहे थे तो भगवान आपको मेवा भी दे रहे थे, ठीक है। और कोई इधर किसी ने कुछ सेवा करी, कुछ और एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, जब कभी हम सेवा करते हैं, हमने बताया ना उसका ए टू जेड एस्पेक्ट देखना चाहिए। आप जो उनसे सेवा कर रहे हैं उसमें हर चीज़ को सोच लीजिए, क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। कि लोगों को आप अनाउंस कर रहे हैं तो एक अनाउंसमेंट का लिए माइक होना चाहिए था, है ना, हर जगह पे लोग होने चाहिए थे, कितने लोग चाहिए पहले तरीका होना चाहिए था, फिर कहाँ पर प्रसाद निकाल के रखेंगे, कहाँ पर प्लेट्स रखेंगे, प्लेट्स आपने तय लगा दी लेकिन बांधा नहीं उनको, तो वो अगले दिन हवा से पूरे रोनी में फैल जाएंगे, है ना। तो वो फिर सेवा का क्या हो गया, भरता बन गया, है ना। कई बार होता है हम लोग लगा के चले गए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाई कि अगर ये बांध दें उसको, नहीं तो कुत्ता जाके खोल देगा तो कुछ भी हो जाएगा। तो हाँ, मतलब हर चीज़ एंड तक सोचना चाहिए, कोई भी सेवा हो, कि आखिरी इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस किया और भागो, है ना, कपड़े झाड़ो और भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेवा को उसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी, इस तरह की सेवा करने का मन बनाना चाहिए, तब जाके वो सब लोगों को सेटिस्फाई कर पाएगी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अच्छा लगा आपको ये मीनियल सेवा करके, है ना। ये सेवा ऐसी है कि मतलब सबकी प्लेटों को, झूठा प्लेटों को ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी फील देता है कि ठीक है। पता नहीं शुरू में तो लोगों को लगता है यार कौन सी सेवा ले ली कौन सी, लेकिन कई बार ऐसा भी मन में आता है, लेकिन फिर भी आप उस सेवा को करते जाएंगे तो आपको उसमें आनंद भी आने लगेगा कुछ समय। हाँ, तो जो आप कभी खुद प्रसाद खाएंगे आप ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको मालूम है कि वही प्रसाद ज़्यादा लेने से वेस्ट हो जाता है। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस? हाँ जी मैम। क्या सेवा थी? हाँ, वो स्क्रीन ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। एक दिन पहले ही दिमाग में आया कि स्क्रीन लगा लेते हैं। गुड, अगली बार से इसको अच्छा करें। और देखिए 4:30 से लेकर रात के 12 बजे तक कोई हरे कृष्णा बोल रहा है, 6-8 घंटे चैंटिंग हो गए देखिए, है ना। और कितने लोगों से बुलवाया, तो कितना बताते हैं भगवान का नाम किसी के मुँह से निकल जाए तो, अगर सही चेतना में किया जा रहा है तो नेचुरली आप लोगों को वो ब्लिस, वो आनंद मिलेगा मेरे। और तो आध्यात्मिक इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं अगर हम लोग करें तो, नेचुरल पूरी होती है। लेकिन हमारे साथ ज्यादातर यह होता है कि हमारी इच्छाओं में कहीं ना कहीं मटेरियल कंटेमिनेशन होता है, तो उससे वजह से क्या होता है कि शायद पूरी भी नहीं होती, या होती हैं तो बड़ी लेट होती हैं, या फिर भगवान कहते हैं चल ठीक है तेरे को जिद है तो कर ले। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लोग स्वास्थ्य भी अच्छा रख रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं उसके पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य है, तो उसकी जल्दी पूर्ति हो जाती। वेरी गुड, तो आपको तो बड़ा फायदा हो गया। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, थोड़ा जोर से। कैसा रहा पार्किंग का, सब ठीक है? लोग कुछ परेशान तो नहीं होते यहाँ से वहाँ? कैसा लगा सेवा करके? अगले फिर पार्किंग करेंगे। गुड। और किसी को कैसा फील हुआ सेवा करके जन्माष्टमी में? अपना अपना अनुभव बताइए।
तो
मैं पीछे को खड़ा होता, मैं पाँच मिनट को उसको भेजा कि पीछे जाओ, तो गेट के बाहर ही मैंने देखा खड़े होते, मैं पास गए पीछे से बोला तो जब नहीं होता नहीं तो वो सुनते हैं जैसे कि मैं याद रख, तो मैंने देखा कि
बिल्कुल सही चेतना में सेवा हो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने छुट्टी ली है या पूरा दिन की छुट्टी है, पूरे दिन सेवा करनी है, और सबसे बड़ा अटैक क्या होता है उसमें कि कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक और दूसरे भक्तों के द्वारा कहीं ना कहीं आदि बहुत ही क्लेश आने वाले हैं आपके पास। कई चीज़ें आपको वैसी नहीं मिलेंगी जैसी होनी है, है ना, कोई कुछ बोल देगा, तो सेवा का पूरा एक सेंटेंस ही सेवा का पूरा मूड खराब कर सकता है। किसी ने कुछ बोल दिया आपको तो पूरे दिन की सेवा गई। इसलिए सही चेतना बना के रखना ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए सेवा मिलने से पहले भी प्रार्थना, सेवा करते हुए याद दिलाना एक दूसरे भक्त को भी कि भैया किसके लिए कर रहे हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, है ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने सीनियर्स को प्रसन्न करना है, तो कैसे कर पाएंगे जब हम इस सेवा को अच्छा करेंगे। तो अपना कोई वो नहीं रहना चाहिए, उस तरह से करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो गुड कि अगर कोई बीच में प्रार्थना कर रहा है और याद वो दिख भी रहा है आपको, तो ये बहुत अच्छा है। किसी और ने करा बीच में सेवा करते हुए प्रार्थना, याद रहा? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करा? 3-4 लोगों ने, बाकी याद नहीं रहता है, मैं सच बता रहा हूँ। वो अच्छी बात भी है कि अगर बिल्कुल सही चेतना में सेवा में लगे हैं तो याद ही नहीं रहा प्रार्थना करने का, नो प्रॉब्लम, वो भी अच्छा है। बट स्टिल ये ध्यान रखना चाहिए कॉन्शियसनेस हमारी हर समय इन्वेस्टेड हो भगवान में, कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने सीनियर को प्रसन्न करना है, सीनियर अथॉरिटी को प्रसन्न कर रहा है, अथॉरिटी गुरु को प्रसन्न कर रही है, गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये दास दासानुदास का भाव रखना चाहिए, तब जाके हमें कृपा मिलती है। गुड, और नहीं सजेशन नहीं है अभी, केवल अपनी रियलाइजेशन शेयर कीजिए, पूरे दिन सेवा जो की अपने उसमें कैसा लगा क्या नहीं हुआ, यस मत। बच्चों को भी एंगेजमेंट मिला और होना भी चाहिए। इस बार हमने 2 दिन प्रोग्राम किया था तो बच्चों के पास भी एंगेजमेंट होना चाहिए था। कुछ मैं बाहर जब घूम रहा था स्टॉल्स में तो सारे भक्तों के बच्चे लगे हुए थे, हर एक स्टॉल्स के दुकानदार टाइप कुछ चिल्ला रहा था, कोई गेम खिला रहा था, तो मैंने सारे बच्चों से जाके मिला, अच्छा लगा। और क्या अनुभव रहा किसी का इस बार सेवा कर कर? कुछ खट्टे एक्सपीरियंसेस भी हुए, क्योंकि कहीं भी बीच में कुछ खट्टा सा हो जाए तो फिर लगता है यार ठीक है, मतलब बेकार हो गया सब। ऐसा भी किसी के साथ हुआ? कुछ इंसिडेंट मत बताना, किसी का नाम मत बताना। हाँ जी, जाम में फंसे थे कहाँ पे? हाँ 17th-18th के चक्कर में भी थोड़ा सा लगभग लगा, लेकिन 17th को भी काफ़ी लोग आए थे और हमारा प्रोग्राम था उस दिन ऑलरेडी, तो सब बच्चों को कीर्तन कल्चरल प्रोग्राम सारा देखा उन्होंने, और 18th को भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हमारे टेंपल हॉल में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे दर्शन करने के लिए भी, बहुत मैंने ऊपर से देखा तो 1,000 लोग कम से कम खड़े हुए थे, 1,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि वो टेम्पल हॉल इतना बड़ा है कि सब खड़े हो जाएँ तो बैठ के तो 1,000 आ जाएंगे, खड़े होकर तो 1,500 से 2,000। तो भगवान भी गए अब तो गुड ठीक है। तो देखिए जो चेतना है, हमारा जो स्वभाव है वो है दास दासानुदास। होता क्या है, ऐसे फेस्टिवल्स में हम लोग मन वाणी कर्म से पूरी तरह लग जाते हैं सेवा करने में, और इसलिए हम लोगों को कुछ अनुभूतियां भी होती हैं। और जबकि ये स्वभाव है गोलोक वृंदावन धाम का, कि जब कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन धाम में है, जो वो लोगों की तो नेचर है भगवान की सेवा करनी, भगवान के विषय में सोचना, और एक एक सेवा को इतना एक्सपर्टली करना, मतलब जैसे वृंदे देवी हैं जो वहाँ, तुलसी महारानी वृंदा देवी, तो वृंदे देवी की सेवा ये है कि वहाँ पर जो हजारों लाखों या करोड़ों गोपियाँ हैं, ये मंजरियाँ हैं, उन सबको सेवा में लगाना, और हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सेवा है। यहाँ तक कि बाग में कौन से फूल खिलने हैं, कौन से रंग के हैं, कौन सी महक होगी, कौन से वृक्ष होंगे, कौन से पक्षी चहचहाएंगे, आप समझ पा रहे हैं कि फिर राधा और कृष्ण ने मिलना है। ये वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव है कि श्रीमती राधा रानी आएंगी, भगवान कृष्ण आएंगे। अब कहाँ मिलेंगे, कौन से निकुंज में मिलेंगे, कौन सी गोपी के कौन से निकुंज में मिलेंगे, वहां पर कौन से फूल खिलेंगे, कौन सी हवा बह, मतलब किस तरह का सुगंधी होगी वहां पर, कौन से पक्षी होंगे, कौन चहचहाएगा, कौन से, है ना, एक एक चीज इतना माइन्यूटली देखा जाता है, कौन पान बनाएगा, कौन हवा करेगा, कौन चावल डुलाएगा, कौन, है ना, हर चीज के बारे में, तो कौन गाएगा, कौन बजाएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग प्री प्लान्ड। उस समय हफड़ा तफड़ी होती, ये कर दे भाई तू, ये कर दे चल, ये कर दे, अभी वो नहीं आया तो तू बैठ जा, ऐसा नहीं। वहां पर सबका चिंतन इस बात पर चलता है कि हम किस प्रकार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को जब वो मिले तो हम किस प्रकार उनको आनंद दे सके, उनकी सेवा किस प्रकार अच्छे ढंग से कर सके। तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य, गुरु के विषय में बोलो कि वो बहुत ही दक्ष हैं। क्या करते हैं वो, आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को जब मिलाना होता है, जब उनका मिलते हैं जब वो लोग, तो उन सेवाओं को वो इतनी दक्षता के साथ करते हैं, इतने दक्ष होते हैं कि वहां पर कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत, वहां पर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस सेवा को अच्छे ढंग से करने का प्रयास, सुबह से लेकर शाम तक चिंतन, जिसने पान बनाना पान के विषय में, जिसने ड्रेस बनानी ड्रेस के विषय में, जिसने फूल को वो करना है, जिस किस पक्षी ने बोलना है, कौन भगवान राधा रानी का बंदर कैसे उठाएगा, हर चीज डिसाइडेड, कितने बजे घर पहुंचाना है, कितने बजे उनको निकलना है, हर चीज डिसाइडेड। इतना चिंतन किया जाता है राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए। और ऐसा नहीं कि जो करोड़ों गोपियां डायरेक्ट राधा कृष्ण को जाकर रिपोर्ट कर रही हैं, सर मैंने ये किया आज, मैं ये लाई हुई लड्डू खा लो, मैंने बनाया है, नहीं। आप सोचिए वो हायरार्की जो आध्यात्मिक जगत में, कि किस प्रकार जो उनकी 8 प्रमुख गोपियां हैं भगवान की, उनके नीचे कितनी मंजरियां हैं जो श्रीमती राधा रानी को सर्व करती, कितनी सारी गोपियां हैं, और कितनी कितनी गोपियों को क्या क्या सेवा दी गई है, और उन सब गोपियों की युथेश्वरियां हैं, युथेश्वरियां मतलब जो हेड्स हैं, कितनी सैकड़ों हेड्स हैं उनके अंदर, कितनी हजारों सैकड़ों गोपियां एक एक हेड के अंदर में, और वो सारी की सारी अपने हेड्स को रिपोर्ट करती हैं, और वहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ऑनेस्टी है, इतना वो है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई भी बोलते मैं नहीं करता, मुझे नहीं बोला, ये सेवा मेरी नहीं है, ये तो आपकी सेवा है, मैं क्यों करूं इसमें, मेरा क्या, समझ रहे हैं, जो चीज डिसाइडेड है व्यक्ति उसी में लगा पड़ा। और इस प्रकार वो हजारों लाखों करोड़ों गोपियों से भरा हुआ धाम सदैव उत्सव मनाता रहता है, सदैव आनंद में रहता है। और गोलोक वृंदावन धाम में तो भगवान की हर एक्टिविटी एक उत्सव है, जैसे हमने उस दिन भी बताया था। तो इसलिए वहां पर जितने भी लोग हैं सब आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के दास हैं, जानते हैं कि हमें भगवान को किस प्रकार प्रसन्न करना है। वो जो आनंद है, क्योंकि वो जो आनंद लेते हैं आध्यात्मिक जगत में, स्पीक टू द पॉइंट, उन सेवाओं को कर कर जो लोग आध्यात्मिक जगत में तो हमेशा आनंद जाते हैं, और यहाँ पर भी इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो लोग सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक भगवान की जो सेवा लोग करना चाहते हैं, उनको क्या मिलता है, उस चेतना में सेवा करने का क्या बेनिफिट है? तो क्या है, सबसे पहले वो सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको, जो इस संसार में अपनी सेवा कर या किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की सेवा कर नहीं मिलता। यहां पर लोग किसी की कितनी भी सेवा कर लें, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। यहां पर ईर्ष्या है, यहां पर द्वेष है, यहां पर राग है, द्वेष है ना, तो यहां पर किसी की कितनी भी कर लें, दे विल नेवर फील सेटिस्फाइड। लेकिन जैसे ही वो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु, अपनी अथॉरिटी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग गुरु को इतना सम्मान क्यों देते हैं? सारे शास्त्र गुरु का गुणगान क्यों करते हैं? हम लोग गुरु को समर्पित क्यों होते हैं? हाँ जी, हाँ, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि वो साक्षात हरि ही हैं। कौन? गुरु साक्षात हरि है, और भगवान के प्रिय भी हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के। गुरु तत्व भक्तों को पता है, तो साक्षात कृपा की मूर्ति हैं, साक्षात कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ऐसे गुरु की सेवा करने से यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद हो, क्योंकि हम तो कृष्ण को डायरेक्ट देख ही नहीं सकते, कृष्ण को डायरेक्ट सर्व कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन जब भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, तो वो एक वाया मीडिया है, वो माध्यम है हमारी हर चीज भगवान तक पहुंचाने के लिए। हमारी सेवा, हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारी प्रेयर्स, वो भगवान तक पहुंचाते हैं। तो जब हम गुरु की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हम साक्षात समझ लो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा दास दासानुदास, दास दास दासानुदास। फिर एक जगह कुछ भक्त लोगों ने बोला भृत्य भृत्य परिचारे का भृत्य भृतस्य भृतस्य, 6 बार भृत्य बोला कि भाई मुझे तो भगवान आप अपने दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनाएंगे। मैं उस पोजीशन पर रह के बहुत खुश हूं। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, मुझे इसके ऊपर डालिए, मुझे उसके ऊपर डालिए, फिर वो सब मेरे अंडर में हो, फिर सब मेरे अंडर में हो, तो मुझे बॉसों का भी बॉस बनाइए, एकदम उल्टा। तो जो भगवान के दास हैं, जो सही चेतना में सेवा करते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करें, तो वो गुरु को प्रसन्न करते हैं। और जो गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गुरु जो बोलते हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गुरु का वो प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा भी कहते हैं भगवान का वो है रिप्रेजेंटेटिव, उसी प्रकार गुरु तो है ही। और फिर जो गुरु अपॉइंट करते हैं, क्योंकि आप जैसे डायरेक्ट भगवान से कुछ नहीं कर सकते, गुरु माध्यम है, उसी प्रकार क्योंकि गुरु इतने हजारों शिष्यों को भी डायरेक्ट डील नहीं करते, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बनाते हैं। तो जब हम लोग उनको, क्योंकि गुरु की इंस्ट्रक्शंस जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाती हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को जाती है, या वो जो अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो जिनको वो सेवा देते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है आगे करने की। फिर वो जिनको एंगेज करते हैं, वो जो एम्पावरमेंट है वो उधर जाती है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये जो दास दासानुदास का भाव है, वो किस प्रकार नीचे उतरेगा, देखिए कि जब मैं अपनी सीनियर अथॉरिटी को प्रसन्न करता हूं, जिनके अंतर्गत मैं हूं, जिनके मार्गदर्शन में मैं चल रही हूं या चल रहा हूं, फिर वो जिनके अंडर में चल रहे हैं, वो अपने ऊपर प्रसन्न करते हैं, वो गुरु को प्रसन्न करते हैं, गुरु सारा का सारा रिपोर्ट भगवान को देते हैं। नियोफाइट मेंटालिटी में होता है कि मैं तो बस भगवान से मेरा डायरेक्ट संबंध है। श्री राधा राधिका और कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ दे सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौता है कि मैं तो बस भगवान से मेरा संबंध है, दूसरा बीच में कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं नियोफाइट मेंटालिटी। नवदीक्षित भक्त कनिष्ठ अधिकारी, तो जो कनिष्ठ अधिकार में है, कनिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो केवल गुरु की सेवा नहीं कर रहे, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे, गुरु को नहीं मान रहे, अपनी अथॉरिटी को नहीं मान रहे, तो ये पहचान है उस कनिष्ठ अधिकारी की। कनिष्ठ अधिकारी उम्र से दीक्षा के लंबे अरसे से कोई बड़ी सेवा या पोस्ट से नहीं पहचाना जाता, समझ रहे हैं, इससे कोई उत्तम अधिकारी नहीं बनता। मान लीजिए किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं है, बहुत समय से मूवमेंट में है और गुरु के मार्गदर्शन में ना चलकर अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ये कनिष्ठ अधिकारी की पहचान है, तो कनिष्ठ है। बस समझ पा रहे हैं? तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो 6 महीने पुराना भी हो सकता है और 6 साल भी और 20 साल भी और 40 साल पुराना भी हो सकता है। अगर उसकी डीलिंग्स, अगर उसकी मेंटालिटी, अगर उसका सर्विंग एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू द शास्त्रज नहीं है, या वो अपने गुरु को प्रसन्न नहीं करता है, या अथॉरिटी को प्रसन्न नहीं करता है, तो पता चल जाता है। क्योंकि नियोफाइट मेंटालिटी का मतलब है कि डायरेक्ट मैं भगवान और बीच में कोई नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, वो बातें मान दो जो मेरे हिसाब से हैं, बाकी वो नहीं मानता जो मेरे हिसाब से नहीं। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की पहचान। तो हमें तो कनिष्ठ रहना नहीं ना, कनिष्ठ से ऊपर उठना है। जो कनिष्ठ से ऊपर की स्थिति है वो है मध्यम अधिकारी की। मध्यम अधिकारी जो है वो प्रचार करता है, वो सबसे मैत्री रखता है, वो गुरु के आदेशों का अक्षरज पालन करता है, वो मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा से दूर रहता है, केवल द्वेषी लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखता है ताकि वो अपराध ना करे। तो जो लोग सही चेतना में अपनी अथॉरिटी को, आपको समझना पड़ेगा इसलिए इस सिद्धांत को, क्योंकि अगर हम लोग इतना बड़ा जैसे फेस्टिवल मना रहे हैं, अब गुरु चाहते हैं कि सारे मंदिरों में फेस्टिवल, गुरु की इच्छा है, तो जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है वो सभी दीक्षार्थियों को इकट्ठा करेंगे, वो कहेंगे भाई फेस्टिवल अच्छा मनना चाहिए। हाँ जी, मनेगा जी, वो सबको सेवाएं बांटेंगे, तो खुद थोड़ी करेंगे, उनके अंडर भी टीम्स हैं, वो उनसे करवाएंगे, और कुछ और सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उनको और नीचे बुलाएंगे। तो इस प्रकार जो ये हायरार्की है, इस प्रकार जो ये टीम बनती है, तब जाके इतने बड़े फेस्टिवल्स हो पाते हैं। अब सोच कर देखिए, आप सब नहीं हो, मैं अकेला हूं और जन्माष्टमी का फेस्टिवल है ना, तो यहां तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, है ना जी। फेस्टिवल तो फेस्टिवल रहेगा नहीं, और स्टैम्पेड हो जाएगा, लोग गिरेंगे मरेंगे, कुछ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी सुना कोई मंदिर में कहीं पर स्टैम्पेड हुआ है, लोग भागने लगे, भगदड़ मची, 10 लोग मर गए। मैनेजमेंट नहीं था, लोग नहीं थे, सिस्टम्स नहीं थे, तो कितना नुकसान होता है धर्म का, कितना नुकसान होता है लोगों की फीलिंग्स का, जान माल की हानि होती है, अथॉरिटीज को निंदा सहनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि गुरु चाहते हैं सुंदर ढंग से फेस्टिवल हो, आप कभी फेस्टिवल के टाइम पर कभी गुरु को वृंदावन मिल जाओ, तो महाराज पहला सेंटेंस ये नहीं बोलते कैसे हो, कहाँ हो, क्या है, कहते कब जा रहे हो वापिस। पहला सेंटेंस ही, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया मैंने तुम्हें प्रभु दाता देश एक जगह दे रखी है सेवा करने के लिए, उस वही वृंदावन है, वहां करो, नहीं नहीं मैं बहुत टाइम से, मैंने वहाँ की जन्माष्टमी नहीं देखी, मैंने वहाँ की राधाष्टमी नहीं देखी, मैंने वहाँ की वो नहीं देखी। अरे बाबा जो मैंने बोल दिया वो करो। तो जो नियोफाइट होगा, जो कनिष्ठ अधिकारी होगा, क्या करेगा? महाराज से बोलते रहते हैं। इस बार मैंने राधाष्टमी वहाँ मनाई, इस बार मैंने जन्माष्टमी वहाँ मनाई, इस बार मैंने अपने हिसाब से मैं तो वहाँ चला गया। तो ये कनिष्ठ अधिकारी की मेंटालिटी है। इसलिए जब कभी गुरुजी देख लें किसी व्यक्ति को वृंदावन में कहीं पर भी, तो पूछते हैं कब वापस जा रहे हो, पहला सेंटेंस। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई तेरा प्रभु दत्त देश तो वो है, इस समय वहां तुम्हारी जरूरत है और तुम यहां घूम रहे हो, इंद्र तृप्ति कर रहे हो। जैसे एक बार कोई भक्त गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, महाराज के शिष्य थे, महाराज भी परिक्रमा कर रहे थे, तो अचानक देखा, अरे तुम यहां, महाराज मैं दंडवती परिक्रमा कर। अब महाराज ने देखा, भाई ना तूने मेरे से पूछा, सेवा तेरी मैंने कहीं और लगाई हुई है, तू यहां पर दंडवती परिक्रमा कर रहा। महाराज थोड़ा आगे गए तो भक्तों को बोला कि ऐसी दंडवती परिक्रमा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ ही नहीं है। वो बेचारा 7 दिन से लगा रहा दंडवत परिक्रमा, शारीरिक एक्सरसाइज हो गई बस। और जो चीज आज्ञा के अनुसार, जो चीज गुरु की इच्छा के अनुसार होती है, सारा फल उसका है। वो चाहे छोटी सेवा हो, चाहे 1 मिनट की सेवा हो, गोलोक वृंदावन धाम में कोई छोटी सेवा है कि बस क्या करना है, पंखा कर, क्या करना है, पान बनाना, बस पूरे 24 घंटे मिले उनको पान बनाने के लिए खाली, समझ रहे? तो पूरा चिंतन कहां से लाऊं, क्या करूं, क्या। तो एक छोटी सी, किसी दूध उबालना है दूध उबालना, किसी को लेकर आना है, हाँ जी लेकर आना, किसी को ठंडा करने की सेवा है, समझ रहे? तो हर एक के पास केवल एक सेवा है, लेकिन उस सेवा में वो पूरी तरह से व्यस्त है, उसके चिंतन में और चीज। तो जो सेवा दे दी गई वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तब होता है जब वो जो हायरार्की है, जो टीम है, मतलब जो परंपरा है, वो कहीं खंडित ना हो। और वो कब देखा जाता है? जब नीचे वाला व्यक्ति देखता है कि इन्होंने मुझे ये सेवा बोली कि भाई तुम ये सारा काम करो, और खुद वो चने खा रहे हैं, चने इन द सेंस की रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, या खुद के एग्जाम्पल से नहीं दिखा रहे हैं लोगों को, सिखा नहीं रहे। तो दूसरा कहेगा भाई जब तुम ऐसा कर रहे हो, और फिर वो देखता है ये अपने सीनियर से कैसे बात करता है, उसने बोला ये करो, वो कहता है मैं नहीं करूंगा, मेरे दिमाग खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये वाली सेवा चाहिए। तो उसके जो मेंबर्स हैं उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि जुबान लड़ा सकते हैं अपने सीनियर से, और जो चीज पसंद है वही चीज़ करनी चाहिए, और साफ साफ बोल देना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है भाई। तो नीचे वाला भी यही करेगा, तो उसके नीचे की जो परंपरा बनेगी वो सारी ऐसी बनेगी। और अगर कोई व्यक्ति देखते नहीं, जो मेरे सीनियर मुझे जो बोल रहे हैं, उनके पास पहली 50 सर्विसेज हैं, उसके बाद भी इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी हर चीज़, तो वो भी उनसे वो चीज़ सीखकर सेक्रीफाइस, त्याग करना चाहेगा अपने समय का, अपना बलिदान करेगा, और वो फिर अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, इस प्रकार करके तब पूरी की पूरी चेन में जो है आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन होता है, सबकी जो है आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार इतने बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसमें हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने की। तो जो सही चेतना में करते हैं, बताने जो भक्त अच्छे हैं, जो सही चेतना में करते हैं, तो सबसे पहले उन सेवाओं को कर उसको क्या प्राप्त होता है, ऐसी संतुष्टि प्राप्त होती है जो यहां पर कहीं नहीं मिलती बाहर। और जो उसकी भूख है, जो आत्मा की असली भूख है, क्योंकि वो आज सेल्फलेसली भगवान की सेवा में लगा है, तो आत्मा की असली खुराक ही क्या है, भगवान की सेवा, तो वो उसका पोषण होता है, उसकी भक्ति का पोषण होता है उससे। और क्या होता है, सही चेतना में सेवा करने वाला कभी थकता नहीं है। जब हम लोग महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल पता चलता है, और उसके बावजूद जिस भी मंदिर में वहां सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अपनी ड्यूटीज का सब कुछ करते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं हम जैसी कंडीशन सोल समझ नहीं पाते कि एक व्यक्ति इतनी उम्र में इतनी सेवाएं कैसे कर सकता है, इतनी चीजों का चिंतन कैसे कर सकता है। तो यहां से बाहर होती है सब चीजें समझ में। लेकिन जो लोग कहीं थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं वो समझ पाते, उन सिम्टम्स को देख पाते। तो क्या होता है, जो व्यक्ति इस प्रकार सेल्फलेसली सेवा कर रहा है, जिसकी चेतना पूरी तरह कृष्णमयी है, तो फिर वो शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाता है और उसका उत्साह एंथुजियाज्म बढ़ता जाता है सेवा करने के लिए। और सेवा दो, और सेवा दो, और कुछ करना चाहता हूं। जैसे एक बार कहीं रुक्मिणी कृष्ण बता रहे थे कि एक बार रथ पे कहीं चढ़ गए महाराज, तो वहां कुछ करने को नहीं होता, रथ पे नीचे खड़े हो, किसी से हालचाल पूछ रहे, किसी को बता रहे, किसी को आशीर्वाद दे रहे, किसी के कुछ पुराना। तो रथ पे ठीक है, अभी आरती का समय नहीं है, तो महाराज ने फल बांटना शुरू किया सबको, चलो ये एक सेवा है, फल बांटते। फल खत्म हो गए, अब क्या करें। तो प्रभु जी के हाथ में चामर था, तो महाराज ने कहा इधर लाओ चामर मुझे दे, तुम जाओ। तुम खाली नहीं बैठ सकते, समझ रहे, कुछ ना कुछ चाहिए हर समय। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी, एक क्षण भी जो है वो व्यर्थ नहीं गवाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उत्साह बना हुआ है, क्योंकि व्यक्ति का पोषण हो रहा है, उसकी भक्ति का पोषण हो रहा है, नरिश्ड है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको आनंद मिल रहा है। कैसे? आनंदम बुद्धि वर्धनम, उसका आनंद बढ़ रहा है। तो वो खाली क्यों बैठेगा भाई, तो सेवा करेगा ज्यादा। तो ये सही चेतना में सेवा करने का फायदा। और सेवा को करने के बाद भी एक अचीवमेंट का लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, हम लोग कर पाए जो सेवा करना था, सही चेतना में कर पाए, सक्सेस मिल गई, वेरी गुड। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है व्यक्ति को, यस वी कुड डू समथिंग बिफोर कृष्णा, हम गुरु के लिए, प्रतिनिधि के लिए हम कुछ कर पाए, वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, और एक इस प्रकार के अचीवमेंट का वो होता है। और ये रियलाइज करता है व्यक्ति कि इतनी इम्पॉसिबल सर्विसेज मैं कर पाया, मतलब कई बार होता है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी चीजें ऐसी होती हैं, उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं सर्विसेज में, सेवाओं में, कि व्यक्ति को फील क्या होता है। अगर जो सही चेतना वाला व्यक्ति, वो अगर कोई ठीक है कनिष्ठ अधिकारी है तो कहेगा मैंने किया था ये, सर मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे बोला नहीं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन जो सही चेतना में कर रहा है, एक डिवोटी की बात कर रहे हैं, उस लेवल की बात बता रहे हैं, तो वो क्या फील करता है, वो एम्पावर्ड फील करता है, कि कहता है इसमें मेरा कहीं हाथ था ही नहीं। अल्टीमेटली मैं देखता रहा कि कैसे कोई ना कोई मेरे पास आता रहा, मैं उसको एंगेज करता रहा, और सही समय पे मुझे ये याद आ गया, तो मैंने ये कर दिया और ऐसा हो गया। तो वो देख पाता है कि मतलब मेरे अंदर तो इतनी क्वालिटीज थी नहीं, तो अचानक इतनी सारी शक्तियों का संवर्धन मेरे अंदर कैसे आई। तो फिर वो भगवान की प्रेजेंस को, भगवान की शक्ति को अपने अंदर फील कर पाता है कि मैंने करा कुछ, तो इसमें मेरा तो हाथ था ही नहीं, क्योंकि मेरी तो योग्यता मैं जानता हूं ना, मैं कैसा हूं। लेकिन क्योंकि मैं सही चेतना में, मैं पूरी पवित्रता के साथ करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए भगवान ने सब कुछ अरेंज कर दिया। आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे सेवा वाले मिल जाएंगे, ऐसे डेडिकेटेड लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो वो एम्पावरमेंट दिखता है, व्यक्ति रियलाइज करता है इन सब चीजों को, देख पाता है भगवान का हाथ उन सेवाओं में, अगर वो सही चेतना में कर रहा है। और हाँ, जो भी सेवा कर रहा है उसका कारण समझ पाता है वो, कि इसका कारण ये अल्टीमेटली भगवान के कारण ही हुआ या उनके भक्तों के कारण। सही मूड में सेवा करने का फिर जो सही साधक हैं, जो कर रहे हैं, उनको और क्या बेनिफिट मिलता है, कि वो लोग सेवा के अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्योंकि सही चेतना में, उस कॉन्शियसनेस में की थी सेवा, तो चैंटिंग के लिए टेस्ट डेवलप होता है उनके हृदय में, दे वांट टू चैंट मोर एंड मोर, वो और चैंटिंग करना चाहते हैं, और कृष्ण का नाम लेना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ, बट स्टिल दे वांटेड टू चैंट, वो एक अलग सा ब्लिस आता है उनको, और वो चाहते हैं कि ब्लिस खत्म ना हो, भगवान की और सेवा करने का मन में उत्साह, चैंटिंग और करने का मतलब मन करता है। और दूसरे भक्तों के साथ भी, ऐसा नहीं है कि खाली वो अपने लिए फील कर पा रहे हैं, वो दूसरे भक्तों की भी सेवा को अप्रिशिएट करता है, दूसरे भक्तों की भी रिस्पेक्ट करता है, दूसरे भक्तों को भी बड़ा महान समझता है, उनको भी अप्रिशिएट और ग्लोरीफाई करता है कि आपने करा, आप ये सेवा कर रहे हो। ये गोलोक वृंदावन धाम का मूड है, वो हर व्यक्ति को अप्रिशिएट करता है, हर एक को ग्लोरीफाई करता है। वो देख पाता है कि देखो मैं सेवा कर पा रहा हूं, मेरी सेवाओं में तो इतने कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, इसके अंदर कितना उत्साह है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है दूसरे भक्तों के प्रति, उसकी मैत्री बन जाती है, क्योंकि वो सेल्फलेस है। अगर दूसरा भी सेल्फलेस है तो उनके अंदर सेवा करने का भाव और उजागर होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जिसे किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष और ये अनर्थ नहीं बैठते, वहां पर रुकते नहीं। और फिर और सेवा करने का भाव बनता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, फेस्टिवल आज है, अब कल तो फेस्टिवल नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए तो रोज ही फेस्टिवल है। हमारा मंदिर निर्माण और ये भी एक फेस्टिवल है। अब किसी व्यक्ति को अगर सेवा करनी है और वो सही चेतना में है, तो परमात्मा अपने आप उसको इंस्पायर करेंगे सेवा में एंगेज होने के लिए। जो सेवा करना चाहता है और जिसको पता चल गया कि मेरा स्वभाव सेवा है, तो उसके लिए सेवाओं की कमी नहीं है। कितनी प्रकार की सेवाओं को वो खुद जो है निकाल सकता है, शुरू कर सकता है सेवा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। तो क्या करेगा, हर समय सेवा करने का प्रयास करेगा। अब क्या सेवा करूं, अब क्या सेवा करूं, अब कोई सेवा नहीं तो खाली बैठ, नहीं, चैंटिंग भी एक सेवा है, हियरिंग भी एक सेवा है, एसोसिएशन भी एक सेवा है। अब तो BTG भी चल रही, BTG एक सेवा है, पॉइंट बढ़ाएं, नो प्रॉब्लम, और प्रभुपाद की पुस्तकें हैं उनका वितरण करें, मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से संपर्क करें। हमारे भक्त हैं वो आजकल खूब लोगों को फोन कर रहे हैं, कुछ नंबर मिल गए थे उनको, तो लगे हुए सुबह दोपहर शाम एनर्जी लगा रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं, पांडव बना रहे हैं। तो हर समय चेतना में क्या है कि क्या करूं मैं भगवान के लिए, क्या करूं और क्या करूं। तो ऐसा मूड बने रहना चाहिए अगर हमारा लक्ष्य है बाहर निकलना संसार से, अगर हमारा लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, ये बना रहना चाहिए मूड। और इस शरीर से हम क्या कर सकते हैं, और अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी कहां लगा सकते हैं, भगवान की सेवा के अलावा जहां लगाओगे तो कर्म बंधन है। इस संसार में अगर यूज किया उस एनर्जी को तो कर्मों के लिए बंधन बनेगा ना आपका, वो फिर पुण्य कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। तो अगर अपने मन वाणी कर्म को, एनर्जी को, धन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो अध्यात्मिक बन जाता सब, वो भक्ति बन जाती, तो उसमें फिर ईगरली आगे बढ़ना। और सबसे बड़ा फायदा क्या कि हमें कृष्ण प्रसन्न है या नहीं शायद पता ना हो। गुरुजी तो ट्रेवलिंग पे हैं बड़े मंदिर में, उनको पता है कि नहीं पता कि मैं सेवा यहाँ कर रही हूँ, मैं ये पत्ते उठा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पैर धुला रहा हूँ, कौन जानता है मुझे, है ना। नाम दोगा केशव मुरारी होगा, है ना, नाम तो है लीडर्स का, है ना, तो मेरे को कौन देखने वाला है, मुझे कौन जानने वाला है कि नहीं, बात है कि ठीक आता है ना मन में कि नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही आता है। वही काम अपने करा, तम काम को लग गया, ठीक है नहीं। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है कि भाई हम कर रहे हैं सब कुछ, है ना, और फल जा रहा है किसी और को, भगवान ने पता नहीं खुश हुए कि नहीं हुए, गुरु को पता है कि नहीं पता। चलो अगर हमने कर भी दी, अब अल्टीमेटली केशव मुरारी को तो पता चलना चाहिए था ना कम से कम कि मैं ये कर रहा था, ये कर रही थी, हमने प्रसाद सर्व किया, किसने किसने बनाया, कम से कम ये तो पता चल जाए ना, मुझे ये वाली दाल मैंने बनाई थी। तो कई बार रहता है इस तरह का कि भाई ठीक है पता चल जाए, चलो अगर, चलो प्रभु जी को भी नहीं पता चला, कम से कम हमारे ग्रुप लीडर को तो पता चल जाए कि भाई मैं यहां लगा हुआ था, मैं ये कर रहा था, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर कृष्ण को आपको लगता, अगर वैसे तो ये सब ट्रांसेंडेंटल है, सारी चीजें भगवान को दिख रही हैं, गुरु को पता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं भी पता, लेकिन आपकी सीरियसनेस और सिंसेरिटी के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में चला जाएगा सामान, पैसे, आध्यात्मिक शक्ति पहुंच जाएगी, डोंट वरी। ये मटेरियल सिस्टम नहीं है कि आपको 1000 रुपए का ट्रांसफर नहीं मिला, समझ रहे हैं? तो ये स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं, यहां पर बैंकर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर अगर कोई एब्सेंट भी है तो भी चीज, अगर बीच में कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन आप सिंसियरली सेवा कर रहे हो, आपके अधिकारी अगर इतने सिंसियर नहीं है जितने आप हो, आपकी रिपोर्ट ऊपर नहीं जा रही है, नो प्रॉब्लम। ये सारा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप सिंसियर हो, आप सीरियस हो, तो कृष्ण देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, और आपको आपकी सेवा का फल, फल नहीं मतलब आध्यात्मिक उन्नति के रूप में, स्पिरिचुअल उसके रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है कि आप किसी जिस अधिकार के अंडर में हो वो इतना स्पिरिचुअली एडवांस ना हो, हो सकता है उसकी मेंटालिटी नहीं हो, फाइट हो, लाइक वो कनिष्ठ अधिकार पे हो, अधिकारी हो, लेकिन आप उत्तम अधिकारी बन सकते हो नीचे सेवा कर, क्योंकि आपकी चेतना ठीक है। तो गुरु देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, है ना? तो ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसने देखा। तो क्योंकि यहां पर यह सब आ गया तो फिर सेवा के बदले क्या मांग लिया हमने? मान सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा मांग ली। तो सबसे पहली जिम्मेवारी हमें खुद भी सीखनी है और आगे भी सिखानी है, वो ये कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाय एवरीबडी, कृष्णा, हिज एसोसिएट्स, ऑल गुरु परंपरा, सबकी नजर आपके ऊपर है, डोंट वरी कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा। और कई बार होता है, प्रभु जी मेरी तो गलत रिपोर्ट कर दी, प्रभु जी मेरे को, मैं तो ऐसा किया भी नहीं फिर भी ये बोल दिया, मुझे बुला लिया उन्होंने और पूछ लिया मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कई बार कुछ गलत रिपोर्ट हो जाए, कोई प्रेसिडेंट को बोल दे भैया इन्होंने गलत काम किया, तो ऐसा मत सोचो कि आपकी ख्याति में कमी आ गई, आपका, आपकी गलत रिपोर्ट होने के कारण अब आप उनकी नजरों से गिर गए हो। और इसलिए कई बार लोग मंदिर छोड़ देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं, उनको लगता है भाई मेरी रिपोर्ट गलत चलेगी, लोगों ने मेरे बारे में ये बोल दिया और ऐसा कर दिया। अरे जो व्यक्ति ईमानदार है, जो सेल्फलेस है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी बोल दो, किसी ने भी बोल दिया, चाहे आपके सबसे बड़े अधिकारी ने किसी को रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि आप तो, आपको तो भक्ति से मतलब है ना, आपको तो सेवा से मतलब है। और अगर मान लीजिए सब लोग बोल भी दें कि नहीं जी हाँ ये गलत था, जिसने गलत किया जी कुछ भी, बट आप सिंसियर हो, आप सेवा करते रहिए अपने, आज नहीं तो कल पहचाने जाओगे। लेकिन अगर नहीं भी पहचाने जा रहे सो कॉल्ड हायरार्की वाले सिस्टम में, लेकिन गुरु और कृष्ण फिर भी पहचानते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जो सीखना है और सिखाना है वो ये कि जो गुरु परंपरा चली आ रही है, जो भगवान श्री कृष्ण से और जो गुरु के माध्यम से जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, तो जो मेरी इमीडिएट अथॉरिटी है जिसने मुझे सेवा दी है, आई शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट फॉर दैट पर्सन कि मुझे उसने जो सेवा दी मुझे उसको रिपोर्ट करना है इमीडिएट अथॉरिटी। मत सोचिए कि नहीं अगर मैं छाऊंगा नहीं, मैं दिखूंगा नहीं मेरे को, तो कौन पहचानेगा मेरे को, मैं इतने टाइम से आ रहा हूं। नहीं नहीं, ये सारी की सारी दूषित मेंटालिटी सेवाओं में नहीं डालनी चाहिए। हर चीज अपनी इमीडिएट अथॉरिटी को बता के प्रयास कीजिए, करें, उनसे शिक्षा लेकर करें, उनकी आज्ञा के अनुसार करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। और अगर अथॉरिटी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर रही है ऊपर, अथॉरिटी जब देखती है, कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे के मेंबर्स जो अच्छे सेवक हैं, अच्छी चेतना है, अच्छे क्वालिफाइड हैं। तो कई बार लीडर को जो कि शायद इतनी अच्छी मेंटालिटी खुद नहीं रख पाता, तो वो कई बार इनसिक्योर फील करता है, अरे ये मेरा मेंबर, ये तो बड़ा श्लोक याद करता है, इसको इतने श्लोक याद हो गए, मेरे को तो इतने, ये तो मेरे से अच्छे एग्जाम्पल देता है, ये तो अच्छी अच्छी सेवा करता है। कई बार हो सकता है इस तरह भी हो जाए, तो लीडर को कई बार इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, अरे भाई ये तो आगे बढ़ जाएगा, तो क्या कहता है, हो सकता है मतलब अगर सही चेतना में नहीं है तो क्या करेगा, ओके तुम आज से ये सेवा मत करो, तुम बस ये फोटो सेट कराओ, तुम ये फॉर्म भरते रहो बस, समझ रहे। कई बार हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने ये हम जो हायरार्की की बात कर रहे हैं, सारे उत्तम अधिकारी नहीं है, इसमें कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ मध्यम हैं, कनिष्ठ उत्तम हैं, फिर कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं, फिर मध्यम मध्यम कनिष्ठ हैं, फिर मध्यम मध्यम हैं, मध्यम उत्तम हैं, बड़ी इसके अंदर भी बड़ा सिस्टम है। और हर व्यक्ति उत्तम अधिकारियों के स्तर पर नहीं काम कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, लेकिन हमें उसको पूरी सिंसेरिटी से फिर भी फॉलो करना है, क्योंकि हमने बताया जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है हमारा, उसके अंदर हमारी सिंसेरिटी और सीरियसनेस का पारितोषिक या पारिश्रमिक वो मिलता जाएगा, डोंट वरी अबाउट। लेकिन कहीं अगर आपको लगा कि नहीं 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 मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, या मेरे साथ मिस भी वो क्या बोलते थे, क्या शब्द होता है मेरे साथ, पार्शलिटी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेदभाव किया जा रहा है, तो अगर आपको अंदर ऐसा भाव आ रहा बार बार, तो फिर आप अपनी भी चेतना दूषित कर रहे हैं और सीनियर के प्रति ऑफेंस कर रहे हैं। सीनियर को तो सुधरना ही सुधरना है, वो तो प्रयास करेगा करेगा, हर व्यक्ति को तो प्रयास करना है, तो जो प्रयास कर रहा है, जो सुधरने का प्रयास कर रहा है, जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो और सरेंडर होने का प्रयास कर रहा है, तब तो सब ठीक है ना। तो वो फिर पूरे की पूरी जो चेन है, कृपा फिर वहां से आराम से आएगी, नो वरी। लेकिन अगर किसी की मेंटालिटी ठीक नहीं है, किसी का उद्देश्य ठीक नहीं है, किसी वो ठीक नहीं है और बहुत मुश्किल है, बट यू अब आप अपने स्तर पर ठीक कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको आगे बढ़ाते हैं। और कभी ऐसी स्थिति हो जाए, मान लीजिए कि बहुत कुछ हो जाए, तो फिर अपनी अथॉरिटी से उसी से बात कीजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा, आपने मुझे ये बोला, मैं इसके ठीक कर सकता हूँ, आप मुझे ये सेवा दे सकते हैं, मैं ये ठीक कर लेता हूँ, मुझे ये बता सकते हैं, है ना, और इस प्रकार बात कर सकते हैं। तो क्या जवाब देते हैं, सुनो समझो, वैसा करने का प्रयास करो, फिर समझना है, फिर पूछो, इस प्रकार बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए सारा सिस्टम, वहां समझना है, तो तब जाके आपको लगे बहुत समय हो गया, तो फिर आप उससे आगे की अथॉरिटी में बात करें, फिर उससे आगे बात करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार जो ये सेवा का वातावरण है, ये जो सेवा का भाव है, ये हमारे जीवन के लिए, ये हमारी लाइफ एंड सोल है, हमारी नेचर है, और अगर हम इसकी इंट्रिकेसीज को समझ जाएं, इसमें इन सेवाओं को करते वक्त, और जो घर में हम लोग रोज सेवाएं करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इन सारी सेवाओं को करते हुए हम लोगों को बस अपनी चेतना में ये रखना है कि हम कभी भी किसी प्रकार अपनी उन सेवाओं को दूषित ना करें मटीरियल एनवायरनमेंट से, या अपने ही अनर्थों से उसको कवर ना करें। और जो सेवा हमें जिस अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, उसका प्रयास करें पूरी तरह से पालन करने का। तो इस प्रकार जब हम करेंगे, तो हम लोग बड़े से बड़े फेस्टिवल और बड़े से बड़े जो गुरु के उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति में कुछ सहयोग कर पाएंगे, कुछ अच्छे स्तर पर, कुछ अच्छे उसमें कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी नेचर है, और इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमाण प्रभुपाद।